તારીખ 11/8/1997 શ્રી સમયસર ગાથા 143 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 132
ગુજરાતી માં ચાલે હિન્દી મેં હિન્દી મેં ચલે શ્રી સમય સાર પર માગ કરતા કર્મ અધિકાર કી 143 ગાથા થોડા ચલા હૈ સંક્ષેપ મેં ફિર સે લેંગે ઇસ ગાથા મેં પ્રક્ષાંતિ ક્રાંત જો હુઆ હૈ એસા સ્વામી હો જિસને સંપન્ન કિયા હૈ ઇસકા ક્યા સ્વરૂપ હૈ વો બાત લિયા હૈ પક્ષાંતિ ક્રાંત કા સંક્ષિપ્ત ખુલાસા વો હૈ કે જો શુદ્ધાત્મા કે એક હી કિસી એક પહેલુ કા ભી પક્ષ નહીં કરતા સમગ્ર રૂપ સે જો શુદ્ધાત્મા કો જાનતા હૈ સમગ્ર રૂપ સે અનુભવ કરતા હૈ और एक भी पहलू का मुख्य गौण करके कोई पक्ष नहीं होता है उसको पक्षांति क्रांत कहने में आया है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को किसी भी पदार्थ को जानने में पहचानने में उनके जो मुख्य मुख्य धर्म है उस मुख्य मुख्य धर्म के क्रम से समझ करके फिर इसकी पहचान करने की होती है और जो पहचान होती है वो समग्र रूप से पूरी पूरी होती है और वहाँ तक विकल्प रहता है। आत्मा के मुख्य धर्म जो है ज्ञान दर्शन चारित्र आदि इस मुख्य गुणों से स्वभाव अखंड स्वभाव को अभेद स्वभाव को पूरे स्वभाव को लक्ष्य में लेने पर भी उस विषय में वर्तमान अवस्था को गौण करके ये स्वभाव की मुख्यता का विकल्प चलता है वो एक पक्षांतर क्रांत होने पहले की एक स्वाभाविक परिस्थिति है जिसको निश्चय नहीं का पक्ष कहने में आता है यानी निश्चय नहीं के विषय का पक्ष है। निश्चय नहीं का पक्ष माने निश्चय नहीं के विषय का वो पक्ष है। तो वो पदार्थ महान होने से आश्चर्यकारी होने से महिमावंत होने से इसकी महिमा आवे वो बहुत स्वाभाविक है किंतु ये पदार्थ है वो निर्विकल्प है अभेद है और इसकी चरम सीमा की जो महिमा है वो निर्विकल्प भाव से आती है। स्वविकल्प भाव है वहाँ तक इसकी जो महिमा है वो पर्याप्त मात्रा में कभी मिथ्या दृष्टि को नहीं आई है नहीं हुई है। जैसा पदार्थ है उस रूप अवस्था हो जाए माने जैसा निर्विकल्प पदार्थ है उस रूप निर्विकल्प अवस्था हो जाए तभी तो इनकी महिमा सच्ची। चूंकि विकल्प में इस पदार्थ को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। विकल्प में इस निर्विकल्प पदार्थ को ग्रहण करने की
क्षमता
नहीं है, योग्यता नहीं है। तो लक्ष्य में तो पूरा का पूरा जो निर्विकल्प पदार्थ है, निर्विकल्प स्वभाव है, वही है ज्ञान में। लेकिन ये महिमा अपर्याप्त मात्रा में है, वहां तक चारित्र गुण में विकल्प उठता रहता है, चलता रहता है। पर ये बढ़ जाने से ये विकल्प शांत हो जाते हैं, विकल्प होना बंद हो जाता है, और जैसा स्वरूप है निर्विकल्प, वैसी ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र की आत्मा रूप, स्वयं के रूप अवस्था हो जाती है। उसी को स्वानुभूति कहते हैं, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसी को आत्मख्याति कहते हैं, उसी को समय सार भी कहने में आया है। और आखिर में ये गाथा के आखिर में आचार्य महाराज ने लिखे, वास्तव में वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा ज्ञानात्मा। देखो पहला शब्द क्या लिया, परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक्ष ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समयसार है, ऐसा हुआ। सम्यक दृष्टि को परमात्मा बोला है, क्यों के सम्यक दृष्टि स्वयं को परमात्मा स्वरूप में अनुभव करता है। अपना स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप है, अभी तक विकल्प रूप अनुभव करता था। क्या था, जो विकल्प चलता था उस विकल्प रूप अपना अनुभव उनको होता था, वो झूठा अनुभव था, वो सच्चा अनुभव नहीं था, क्योंकि आत्मा वैसा नहीं है। जैसा विकल्प है वैसा तो आत्मा नहीं है, आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है। तो परमात्मा स्वरूप का परमात्मा स्वरूप के रूप में अनुभव होना, वही सम्यक अनुभव है, वही सच्चा अनुभव है। तो ऐसा अनुभव हुआ कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, तो ये परमात्मा स्वरूप से तो था ही, अब अनुभव में भी आया, तो ये परमात्मा हुआ ऐसा कहने में आता है। क्या कहने में आता है,
परमात्मा हुआ,
ये परमात्मा हुआ। कहते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान है ना, तर्क तो लगाएंगे, खास करके विद्वान लोग हैं वो तर्क लगाएंगे कि ये तो चतुर्थ गुण स्थान है ना, कि हमने तो जो अनुभव किया वो हमारी आत्मा तो 14 गुण स्थान से भी पार जो तत्व है ऐसी है, हमने गुण स्थान रूप हमारा अनुभव नहीं किया। छठी गाथा में क्या कहा आचार्य महाराज ने, नवी होदी पमत्तो न पमत्तो, मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं
अप्रमत्त भी नहीं,
अप्रमत्त भी नहीं, मैं जिसका अनुभव करता हूँ वो तो ज्ञान ज्योति है, वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो यहाँ ऐसे सम्यक दृष्टि की अनुभूति को समझाने के लिए आचार्य महाराज ने केवली भगवान का दृष्टांत लिया है। सिद्धांत समझाना है सम्यक दृष्टि के स्वरूप का, दृष्टांत लेते हैं केवल ज्ञानी का। ऐसा क्यों लिया आचार्य महाराज ने, कि जो केवली भगवान है उसी के अंशरूप अवस्था यहाँ उत्पन्न होगी। वो तारतम्यता के हिसाब से अंश रूप है, जाति के हिसाब से बराबर जाति की है, फर्क तारतम्यता का गौण कर दिया और जाति की बराबरता को सामने रखा, इसलिए वो दृष्टांत सिद्धांत का मिलान होता है इसी मुद्दे पर, क्योंकि दृष्टांत तो किसी एक मुद्दे पर ही लिया जाता है, सर्वांग रूप में वो लागू नहीं होता।
सत्पुरुष को ऐसे परिणतियों में देखना, सत्पुरुष की जो उड़खान में है, सत्पुरुष को इस प्रकार परिणतियों में देखना।
हाँ, सत्पुरुष को की पहचान होती है तो अपने परमात्मा स्वरूप वो कैसे परिणमन कर रहे हैं, अपने परमात्मा स्वरूप वो कैसे अनुभव कर रहे हैं, ऐसा जब देखने में आता है तो पहचान होती है। सुगानी जी की बात किया था कि सुगानी जी ने गुरुदेव को राग और ज्ञान भिन्न है ऐसा कहते हुए मात्र सुना ही न था, मात्र सुना ही नहीं था, किंतु ज्ञान और राग भिन्न है ऐसे परिणमते हुए देख लिया था। तब उनको संकेत के बीज रूप, जो संकेत के कारण रूप संकेत है, उसी का जन्म हुआ, पहचान हुई। मैंने कारण गणी प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष कारण पैदा हुआ। फिर स्वभाव की पहचान होती है, अपने स्वरूप की पहचान होती है, और फिर इसके बाद जो अनुभव होता है उसी को ही परमार्थ सम्यक दर्शन कहने में आता है।
गाथा सतपुरुष की पहचान कराने हेतु कही गई है।
हाँ, कुछ भी समझो, अपने को बोध लेना है तो ऐसा समझो, तो उसमें क्या नुकसान है। यहाँ सम्यक दर्शन को, सम्यक दृष्टि को परमात्मा कह करके उसकी पहचान करवाई है। मुमुक्षु जीव को सम्यक दृष्टि का स्वरूप बतलाने का फिर दूसरा आशय कौन सा हो सकता है? जहाँ जहाँ सत्शास्त्रों में, सदग्रंथों में सम्यक दृष्टि के स्वरूप की बात आती है, इसकी महिमा की बात आती है, इसकी दशा की बात आती है, तो इसकी पहचान कराने के लिए तो आती है। देखें, देखो कैसे वो परिणमन कर रहे हैं। अगर इसकी पहचान हुई तो पहचान जिसको होगी उसको भी सम्यक दर्शन होने का एक ठोस नियमबद्ध ऐसा कारण है जो कार्य से प्रतिबद्ध है, ऐसा एक कारण पैदा हो जाएगा। यहाँ कहते हैं कि केवली भगवान परिपूर्ण वितराग भाव से साक्षी रूप होने के कारण विश्व के सभी पदार्थों को जानते हैं, मात्र जानते हैं, जानते हैं मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर जानते हैं। तो विश्व के पूरे विश्व में श्रुत ज्ञान का स्वरूप भी आ जाता है, और श्रुत ज्ञान में इसके दो अवयव है, निश्चय और व्यवहार ने, उनका भी स्वरूप उसके ज्ञान में आ गया है। क्योंकि पहले तो निश्चय और व्यवहार ने से साधक अवस्था में वो परिणमन कर रहे थे, और वो तो अल्प ज्ञान था। अब पूर्ण ज्ञान हो गया तो व्यवहार और निश्चय का कोई अज्ञान हो जाता है क्या? पूर्ण ज्ञान होने से कोई व्यवहार निश्चय का अज्ञान हो जाता है क्या? तो ऐसा अल्प ज्ञान रूप परिणमन नहीं रहा, और इसका ज्ञान रह गया, परिणमन नहीं रहा लेकिन इसका ज्ञान रह गया। ज्ञेय का ज्ञान होने से ज्ञान कोई ज्ञेय रूप होता नहीं कभी, ज्ञेय का ज्ञान होने से ज्ञान कभी ज्ञेय रूप नहीं होता, राग का ज्ञान होने से ज्ञान राग रूप कभी
नहीं होता,
नहीं होता। मात्र जानते हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता का अर्थ क्या है कि श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, केवल ही भगवान श्रुत ज्ञान की भूमिका से आगे बढ़ गए। तो श्रुत ज्ञान की भूमिका में तो एक नए व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, ऐसा क्रम से नए का परिणमन होता था उपयोगात्मक में, ऐसा परिणमन नहीं हुआ, क्योंकि केवल ज्ञान है तो सकल विमल है, संपूर्ण विमल है, संपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, तो उसको क्रम से जानने की कोई परिस्थिति नहीं रहती, वो अधूरापन में रहती है। जिस प्रकार उनकी स्थिति केवल ज्ञान की है, ठीक इसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा अर्थात चैतन्यमय आत्मा के अनुभवन द्वारा अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। यहाँ अल्प विराम है, क्या कहते हैं देखो, ठीक केवल ज्ञानी की तरह, उसी तरह ऐसा लिया ना, इसी प्रकार को यहाँ श्रुत ज्ञानी आत्मा जो सम्यक दर्शन स्वानुभव में परिणमन करने वाला है, वो आत्मा की अभी बात चलेगी। उसको क्षोभसम से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी उसको विकल्प आखिरी समय तक है। वो विकल्प क्यों है कि क्षोभसम के कारण से है, नानावरणी का क्षोभसम होने से ज्ञान में अल्पज्ञता है, तो उसके कारण से उनको श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, तो उसकी स्वविकल्प अवस्था चालू है। ऐसा होने पर भी अब विशेष क्या हुआ, विकल्प दशा तो थी, अब विशेषता क्या हुई वो दर्शाते हैं कि पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ। पहले नास्ति लिया, नास्ति में खड़ा था ना, कहाँ खड़ा था,
नास्ति में
खड़ा था, पर पदार्थ में सुख बुद्धि के कारण पर पदार्थ को ग्रहण करने का उसको एक उत्साह था, तो उत्साह अनादि से था उनके परिणमन में, तो निवृत्त हो गया, मैंने खत्म हो गया, उसका नाश हो गया। क्यों? कि सारे जगत से मैं भिन्न हूं और समस्त जगत से, समस्त जगत में मेरी शून्यता है, कहीं भी मैं नहीं, मेरा अस्तित्व कहीं भी नहीं है। आधार बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि नहीं और एकत्व बुद्धि भी नहीं। ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष का अभाव, भावे भावक शंकर दोष का भी अभाव, दोनों प्रकार का जो विभाव था मिथ्यात्व अवस्था में वो निवृत्त हो गया, वो क्षय हो गया, उत्साह चला गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी भी जीव को जहां तक पर पदार्थ को सुख बुद्धि के कारण से ग्रहण करने का उत्साह रहता है, वहां तक इसका खिंचाव पर पदार्थ के प्रति हुए बिना रहता नहीं, और ये राग रूप विकल्प उत्पन्न करने वाली परिस्थिति है। तो पहले तो ये नास्तिक खत्म हुई, नास्तिक का जो दोष था वो खत्म हुआ। ये गुरुदेव का बहुत सुंदर वचनामृत इस पर है, परमागम सार में एक 1002 नंबर का वचनामृत है। विकल्प बिना की ज्ञान की वेदना कैसी है, इसका अंतर लक्ष्य करना इसी का नाम भाव श्रुत का लक्ष्य है। भाव श्रुत ज्ञान में लक्ष्य होता है वो वेदन समेत होता है। दूसरा संकेत में क्या कहा, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश, ये वेदन की बात है, अनुभवांश मैंने वेदन की बात है। विकल्प बिना का वेदन कैसा होता है, हमेशा वेदन में कभी विकल्प हो सकता नहीं। जानने के साथ भेद बुद्धि रही तो विकल्प पैदा हो जाएगा, लेकिन वेदन में विकल्प कभी नहीं होता। तो विकल्प बिना की जो ज्ञान वेदना है, ज्ञान वेदना क्यों लिया, कि ज्ञान में ज्ञ 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 रूप जो सामान्य ज्ञान रूप अवस्था है वो ज्ञान वेदना है। तो 49 गाथा में 5 नंबर का बोल है, सकल विषय के विशेष में एक साधारण रूप संवेदन रूप परिणाम स्वभाव होने से वो भावेंद्रिय के द्वारा भी किसी को रस को चखता नहीं, गंध को सूंघता नहीं और शब्द को सुनता नहीं है, भावेंद्रिय से भी नहीं, क्योंकि वेदना में उसका विषय नहीं होता, वेदना का विषय तो ज्ञान ही होता है। विकल्प बिना की ज्ञान की वेदना, बिना विकल्प वाले ज्ञान वेदना कैसी है, उसका अंतर लक्ष्य होने से, उस रूप आत्म स्वरूप होने से, उसमें भाव श्रुत में आत्मा का लक्ष्य हो जाता है। वो कैसा होता है, वहां एक कंडीशन रखा है गुरुदेव ने। तो 143 गाथा में आचार्य भगवान बात करते हैं, वही बात गुरुदेव करते हैं, अब करते हैं। राग की अपेक्षा छोड़ करके पर के ग्रहण करने का उत्साह निवृत्त होने से, वहां उतना लिया है, शब्द अलग अलग है, बात एक ही है। राग की अपेक्षा छोड़ करके स्वयं का लक्ष्य करने से राग की अपेक्षा रखने वाले को स्वयं का लक्ष्य
नहीं होता।
ये इसका शर्त है। अनादि से राग में सुख बुद्धि है, शुभ राग में, मंद राग में जो मन की शांति है उसमें, साता की शांति है उसमें सुख बुद्धि पड़ी है, और इसके कारण इसके विषय भूत जो पुद्गल है उसमें भी सुख बुद्धि हुए बिना नहीं रहते। राग की अपेक्षा छोड़ करके स्वयं का लक्ष्य करने से भाव श्रुत खिलता है, प्रकट होता है, विकास विकसित होता है, और उस भाव श्रुत में आनंद के फुहारे छूटते हैं। इस भाव श्रुत में क्या होता है कि आनंद के फुहारे छूटते हैं, ऐसे आत्मानंद की प्राप्ति भाव श्रुत में होती है। कि भाव श्रुत को हो, स्वानुभूति को हो, सम्यक दर्शन को हो, नाम एक ही है, कोई अलग अलग चीज
नहीं है।
इसलिए अवलोकन में मुमुक्षु जीव को ये देखना है हमेशा कि हमारा पर को ग्रहण करने का उत्साह सुख बुद्धि रूप एक कल्पना है। इस कल्पना के दौरान क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण से होता है, किस तरह से होता है, कितनी मात्रा में होता है, ये हमेशा अपने अवलोकन में वो बात आनी चाहिए। अगर ये बात अपने अवलोकन में नहीं आई, स्थूल विषय भी नास्तिका, तो अस्थि का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वभाव है वो ज्ञान के अवलोकन में यानी अनुभव में आवे वो कभी संभव नहीं है। इसलिए वो आचार्य महाराज ने पहला वो बात ले लिया, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है। अब ये कहो कि हमको एकला स्वभाव चाहिए, लेकिन तुम खड़े हो वहाँ से, निकले के उठे के नहीं उठे, वहाँ से चले के नहीं चले, वहाँ से चल दिए तो आप इधर आओगे, वहाँ से नहीं चल दिए तो इधर कैसे आओगे। तो कहते हैं कि पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से श्रुत ज्ञान के अवयव भूत व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं। व्यवहार निश्चय का जो विषय है, नए है, नए के पड़खे हैं, इनके विषय हैं, इनकी प्रवृत्ति है, इनके साथ जो विकल्प हैं उनको जानते हैं, उसका स्वरूप से वो अनभिज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है, परंतु इसकी प्रवृत्ति नहीं है, विकल्प की प्रवृत्ति नहीं है। क्यों प्रवृत्ति नहीं है कि अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किया है अपने चिन्मय शुद्ध आत्मा, चिन्मय समय ऐसा लिया है, चैतन्यमय अपना स्वरूप, समय मैंने अपना स्वरूप शुद्धात्मा, तो 43 144 अनुभव करता है सम्यक दृष्टि, तो किस प्रकार से करता है वो एक समझने लायक चीज है। सूक्ष्म है फिर भी उस समझ में नहीं आवे वैसी बात नहीं है। हाँ, आभास गोपाल को ज्ञान वेदना अनुभव में आ रही है, लेकिन पर को ग्रहण करने का उत्साह होता है वहां तक उसका पता नहीं चलता। वहां से निवृत्त हुए और निवृत्त हुए उतने ही नहीं, अस्थि में क्या किया, अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ऐसा लिया है। सूक्ष्म वस्तु है तो पकड़ने में भी ग्रहण करने में भी सूक्ष्मता आनी चाहिए। गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे कि जो सर्प सर्प को पकड़ने का जो सांसा होता है, सांसा कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं संडा से कहते हैं, उससे कोई मोती को हीरे को पकड़ सकते नहीं है। उनके तो शार्प पॉइंट वाली गुजराती में समान ही कहते हैं उसको, उससे हीरे को पकड़ने में आता है। ऐसे स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म स्वभाव को ग्रहण नहीं किया जाता, तो ज्ञान को भी तीक्ष्ण मैंने सूक्ष्म होना जरूरी है। और ज्ञान कब सूक्ष्म होता है अगर इसका विचार किया जाए तो, ज्ञान कैसे सूक्ष्म होता है कि जहां प्रयोजन मालूम पड़ता है, जहां जहां प्रयोजन मालूम पड़ता है उस प्रयोजन के विषय में ज्ञान सूक्ष्म हुए बिना नहीं रहता। और उस प्रयोजन के विषय में जानने की जितना प्रयास बार बार होता है उतना ज्ञान सूक्ष्म होने का एक प्रक्रिया चालू, प्रोसेस चालू हो जाती है। क्योंकि प्रयोजन के साथ रुचि का अविनाभावी संबंध है। जब दूसरे संकेत माने स्वभाव की पहचान के काल में मुमुक्षु आत्मा को ऐसा पता चला कि अनंत गुण की खानी में हूँ, क्या
खानी में
हूँ, अनंत गुण की खानी में हूँ और इसमें अनंत सुख की खानी भी मैं हूँ, तो ये अनंत गुण के भंडार में एक सुख गुण का भी अस्तित्व विश्वास में आता है, खात्री हो जाती है, विश्वास हो जाता है। उसको प्रतीति मां कहते हैं, ज्ञान की पर्याय को। वो पंचाध्याय में उसको ज्ञान की पर्याय के लिए रुचि को, श्रद्धा को, प्रतीति को, विश्वास को, सबको ज्ञान की पर्याय बताइए। क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले का विषय चल रहा है, 400 के पहले पहले के शब्द का था, उसको वो बात चली है उत्तरार्ध में। तो यहां से उसका आकर्षण हो गया, मेरा अनंत सुख मेरे में है, क्या मेरा अनंत सुख मेरे में है, और मेरा अनंत सुख मेरे में है तो मेरा प्रयोजन सुख का है, तो उसके प्रति खींचा होने से, ज्ञान का बार बार खींचा होने से ये ज्ञान रुचि पूर्वक सूक्ष्म होने जा रहा है। जैसे पेंसिल के पॉइंट को हम सूक्ष्म करना चाहे तो उसका संचाता है ना छोटा सा, उसमें घुमाते हैं तो उसका जो पॉइंट है फाइन होता है। ये रुचि है वो ज्ञान को सूक्ष्म करने का संचा है। जितने अपने सुख स्वभाव की रुचि जितनी तीव्र हुई ज्ञान उतना तीक्ष्ण प्रयोजन के विषय में हो जाएगा। माया में भी ऐसा होगा, अपने खुदे के प्रसंग में अनुभव कर लेना, और अंतर में ऐसा ही होता है। क्योंकि सिद्धांत तो दोनों जगह एक सा ही लागू होता है, सिद्धांत नहीं बदलता, एक उल्टा है एक उल्टा परिणाम है। तो अति तीक्ष्ण ज्ञान हो जाता है। अति तीक्ष्ण होने से ज्ञान में अकेला अपना आत्मा ही ग्रहण होता है। उस वक्त अपना आत्म सिवा किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का ग्रहण नहीं होता। जैसे कि बुद्धिपूर्वक का राग शुद्धात्मा के विषय का चलता था, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं एक हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प चलता था, और उसी का ग्रहण जहाँ तक होता रहता था वहां तक वो चालू था, जहाँ तक चालू था तो उसका ग्रहण होता था वहां तक, उसको ग्रहण करने का उत्साह खत्म हो गया और ज्ञान में अकेला चैतन्यमय आत्मा जो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वभाव है, वो तीक्ष्ण ज्ञान में अकेला आत्मा ग्रहण होने से उसका अनुभव हुआ, उसका अनुभव रहा, विकल्प होना ही बंद हो गया, विकल्प उत्पन्न ही नहीं हुआ। स्वयं विकल्प के प्रति ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है, कोई चल चलता है या बंद हो गया है, कोई ऐसा भी विकल्प नहीं है। जिसको इस विकल्प का लक्ष्य रहता है कि ये चलता है बंद हो जाए तो ठीक है, चलता है बंद हो जाए तो ठीक है, चलता है बंद हो जाए तो ठीक है, उसको बंद होने वाला नहीं है, उसको भी बंद नहीं होता। जिसको विकल्प की रुचि है उसको तो बंद नहीं होता, लेकिन जो बंद करने का विकल्प करता है उसको भी बंद नहीं होता, तो भी एक विकल्प हो गया। तो कहते हैं कि लक्ष्य में ये ज्ञान वेदना के द्वारा इसके माध्यम से जैसी निर्विकल्प ज्ञान वेदना है वैसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण कर किए गए निर्मल कैसा है चैतन्य स्वसमय निर्मल है, कैसा निर्मल है कि सर्वांग निर्मल है, परिपूर्ण निर्मल है, क्योंकि उसमें मलिनता कभी आई नहीं, आई तो नहीं, आने की कोई गुंजाइश भी इसमें नहीं है, कोई अवकाश भी नहीं है, वो तो सामर्थ्य रूप है। मलिनता निर्मलता मुख्यतया पर्याय धर्म है, निकाली का वो धर्म नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए कहना पड़ता है वो अति निर्मल है, नित्य उदित है, उसका नया उदय कभी हुआ नहीं, अनादि अनंत अपने स्वरूप से तो सदा ही उदित ही है। नित्यन जी साहब तो अनुभव प्रकाश में वहां तक कहते हैं कि प्रगट अप्रगट तो अवस्था भेद है, क्या उदित होना अस्त होना उत्पाद होना व्यय होना व्यक्त होना अव्यक्त हो जाना, ये तो अवस्था भेद है, क्या अवस्था भेद है। ऐसी अवस्था से पार जो है सो मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा सुख का मूल है, ऐसी श्रद्धा सुख का मूल है। तो वो तो बतलाने के हिसाब से सब कहना पड़ रहा है कि निर्मल है नित्य उदित है, लेकिन नित्य उदित का मतलब ही है कि जिसका शुरुआत कभी हुई नहीं, अंत होने वाला भी नहीं है, अनादि अनंत उदित है, चिन्मय है, एकाकार चैतन्यमय है, ऐसा जो समय नाम अपना शुद्धात्मा है उसके साथ उपयोग प्रतिबद्ध हो गया, क्या उसके साथ उपयोग की प्रतिबद्धता हुई, इसके साथ श्रद्धा की भी प्रतिबद्धता हुई, इसके साथ स्वरूप आचरण की भी प्रतिबद्धता हुई, तो समय दर्शन ज्ञान चारित्रायण मोक्ष मार्ग हो गया। प्रतिबद्धता के कारण वैसे तो अनंत गुण यथा संभव इसके साथ प्रतिबद्ध होते ही हैं, इस समय के से प्रतिबद्धता के द्वारा अर्थात चैतन्यमय आत्मा के अनुभव के द्वारा उसको अनुभव कहते हैं। गुण अनंत के रस सबे अनुभव रस के माई दीपचंद जी ने गाया ज्ञान दर्पण में, गुण अनंत के रस सबे अनुभव रस के माई ताते अनुभव सारे को और दूसरो नहीं। अनंत गुण का रस आता है उसका, ये अनुभव रस उसको कहते हैं। उसको चैतन्य रस कहो, उसको अनुभव रस कहो और उसको अमृत रस कहो, उसी को ही अमृत रस कहने में आता है। जो वचन के पार है और चिंतन से भी पार है, इसलिए वचनातीत है और मनातीत है, अचिंत्य है, अनुभव भी अचिंत्य है। इसलिए कहते हैं कि ये बुद्धि से भी एक पार की चीज होती है, बुद्धि से भी एक पार की चीज होती है। लेकिन कैसे होता है, उसका प्रोसेस है, वो स्वतंत्र बुद्धि गम्य नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा
नहीं है।
तो कहते हैं कि चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा यानी चैतन्यमय अपने आत्मा के अनुभवन के द्वारा, अनुभव के समय मैंने अनुभव के काल में स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से, ज्ञान कैसा होता है अनुभव के समय में, कि विज्ञान घन हो जाता है, ज्ञान घन हो जाता है। तो ज्ञान में घनिष्ठता क्या चीज होगी, ये जो वेदन है वो तो बहुत तारतम्यता पकड़ता है। अपना स्वरूप का जो स्वसंवेदन रूप अनुभवन है तो अपना वेदन में उतनी घनिष्ठता है, उतनी घनिष्ठता है कि सातवीं नारकी को अनंती अशाता की वेदना से वो छुड़ा देता है। ये वेदना से उपयोग छूटना आसान नहीं, दूसरे दूसरे पदार्थों से उपयोग छूट सकता है, लेकिन तीव्र वेदना होती है उससे उपयोग का छूटना उतना आसान नहीं है। वो अपना अनुभव कर लेना, जिसे को जब असाता का तीव्र वेदन होवे तो पता चल जाता है। यहाँ कहते हैं कि तीव्र पाप करके, पूरे पाप करके सातवीं नरक में गए, ऐसे पापी प्राणी को भी भूतकाल में कभी आत्मा का शुद्धात्मा का संस्कार झेला हुआ है, उसी का कारण उनको नई जागृति मां पैदा होती है और अनुभव के समय वो स्वसंवेदन उतना घनिष्ठ होता है, उतना घनिष्ठ होता है, वो साथ में नारकी की वेदना को उल्लंघन करके आत्मा में लीन हो जाता है, स्वरूप का ध्यान लग जाता है। श्री कृष्ण आज जन्माष्टमी है ना, श्री कृष्ण के आज जन्म का दिवस है और हमारे आगे की 24 के वो 13वें तीर्थंकर होने वाले हैं। अभी परमात्मा के स्वयं परमात्मा हो गए, परमात्मा स्वरूप का अनुभव करते हैं और तीर्थंकर अगली 24 में होने वाले, जैसे सैनिक राजा आदिनाथ तीर्थंकर होंगे वैसे श्री कृष्ण भी तीर्थंकर होंगे। तो पहली नारकी में जाते हैं, सातवीं नारकी में तो जाते नहीं, सम्यक दर्शन लेकर के तो तीसरी से नीचे जाते नहीं। ये तो दृष्टांत में समर्थ दृष्टांत लिया जाता है कि सातवीं नारकी की वेदना है उससे भी उपयोग छूट सकता है। यहाँ छोटी मोटी प्रतिकूलता में हम घिरे हुए रहते हैं, ये मामूली बात में हमारा उपयोग नहीं छूटता है। ये हमारा दोष है, किसी का नहीं, हमारा स्वयं का दोष है। लेकिन आत्मा में उतनी ताकत है कि सातवीं नारके की वेदना को उल्लंघन करके स्वयं के आनंद सागर में लीन होना वहां भी संभव है। तो यहाँ तो हो ही सकता है, नहीं हो सकने का कोई कारण है नहीं। उसको विज्ञान घन कहते हैं। क्या कहते हैं?
विज्ञान घन।
उसी को विज्ञान घन कहते हैं, इसी का नाम विज्ञान घन है। इतना घनिष्ठ वेदन आता है। एक न्याय से ऐसा भी कह सकते हैं कि विश्व में ऐसा कोई भी एक पदार्थ नहीं है वो अनुभव करने वाले साधक को, सम्यक दृष्टि को, चतुर्थ गुण स्थान को हिला सके, विचलित कर सके, ऐसा एक भी पदार्थ जगत में नहीं है। भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने तो इसी समय सार में निर्जरा अधिकार में घोषणा किया है कि विश्व में वज्रपात हो जाओ, क्या लिया है सप्त भाई में, विश्व में वज्रपात होने से 14 ब्रह्मांड हिल जावे, क्या 14 ब्रह्मांड हिल जावे, सम्यक दृष्टि हिलता नहीं है। लिया कि नहीं लिया है? तो इसकी ताकत इतनी है। प्रारंभ में इसकी ताकत है, ये चतुर्थ गुण स्थान तो प्रारंभ है, उसमें उतनी ताकत है। उसको विज्ञान घन कहने में आता है, उसी का नाम विज्ञान घन है। सुख बुद्धि है तो जाएगा नजर, वहां सुख बुद्धि पड़ी है तो नजर जाएगा। पहले तो ये खत्म करो कि वहां सुख तो नहीं है, सुख की गंध भी नहीं है। जब ये अपना सुख नहीं होगा तो रस नहीं आएगा, रस तो सुख बुद्धि है वहां तक आने वाला है, सुख बुद्धि नहीं है तो रस नहीं आएगा। सुख भी नहीं है तो दुख कहाँ से होगा? वो तो एक ही अवस्था है, उल्टी सुलटी सुख दुख की, जहाँ सुख नहीं वहाँ दुख भी नहीं। सुख भी अंदर से आती है और उल्टी अवस्था दुख भी अंदर से ही होता है।
सारा की सवाल, सारा की सवाल, दो वर्ष।